તારીખ 17/3/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 308 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 242
હિન્દી પ્રથમે 172 પાને છે. નંબર કા પ્રશ્ન ચલા હૈ એક પેરેગ્રાફ પ્રશ્ન વો પૂછા ગયા હૈ કે ચોથે ગુણ સ્થાન વાલા નિર્વિકલ્પ દશા મેં હો ઓર પાંચવે ગુણ સ્થાન વાલા સવિકલ્પ દશા મેં હો. આત્મા કા આનંદ કા વિશેષ વેદન મેને અધિક વેદન કિસકો હોતા હૈ એસા પ્રશ્ન લિયા હૈ જબકિ મુમુક્ષુ કો યે વિષય ઉતના સમજ મેં ભી નહીં આયેગા ઓર ઉસકા પ્રયોજન કુછ ભી નહીં હૈ. કહેતે હૈ કે નિર્વિકલ્પ દશા કા આનંદ અલગ હોતા હૈ ઓર સવિકલ્પ દશા કા આનંદ અલગ હોતા હૈ. નહીં કોઈ ખાસ બાત નહીં, પઢના હૈ તો જાનકારી કે લિયે પઢના હૈ, ખાસ કોઈ ઓછી બાત નહીં હૈ. તો દોનો કી તુલના નહીં કરના ચાહીએ ઓર દોનો કી તુલના હો ભી નહીં સકતી એસા કરકે જવાબ દિયા હૈ. ક્યોંકિ નિર્વિકલ્પ દશા મેં તો બુદ્ધિપૂર્વક કા વિકલ્પ છૂટ જાતા હૈ, બુદ્ધિપૂર્વક કે વિકલ્પ મેં આકુલતા હોતી હૈ, વો આકુલતા આનંદ કો પ્રતિપક્ષ મેં હૈ. જબકિ નિર્વિકલ્પ દશા મેં તો વો અવરોધ હૈ નહીં આનંદ કો, ઉપયોગ પૂરા પૂરા આનંદ મેં હોતા હૈ. સવિકલ્પ દશા મેં આકુલતા ઓર નિરાકુલતા મિશ્રિત રૂપ સે હૈ એસા પ્રથમ પેરેગ્રાફ મેં ઉત્તર દિયા હૈ. અબ આગે એક પ્રશ્ન ચર્ચા કે દૌરાન કિયા હૈ મુમુક્ષુ ને કે દોનો કી જાતિ હી જુદી હો જાતી હૈ, ક્યા દોનો કી જાતિ મને આનંદ કી જાતિ જુદી હો જાતી હૈ એસા પ્રશ્ન કિયા હૈ. સમાધાન બેન સુને દિયા હૈ કે સ્વવિકલ્પ દશા મેં સ્વવિકલ્પ દશા રાગ મિશ્રિત હૈ, નિર્વિકલ્પ દશા મેં માત્ર આનંદ હૈ, એસા અંતર હૈ વિભાવ ઓર સ્વભાવ કે બીચ જૈસા ભેદ હૈ વૈસા ભેદ નહીં હૈ. સ્વભાવ ઓર વિભાવ મેં તો પરિણામ કી જાતિ અલગ હૈ, એસે યહાં આનંદ કી જાતિ અલગ નહીં હૈ, દો જાતિ કે આનંદ નહીં હૈ, ચાહે સ્વવિકલ્પ દશા હો ચાહે નિર્વિકલ્પ દશા હો. જ્ઞાની સ્વવિકલ્પ દશા મેં જ્ઞાની સ્વકલ્પ દશા મેં સે નિર્વિકલ્પ દશા મેં તો કહાં સે કહાં ચલા ગયા. મેને અવલંબન જો હૈ ઓર અનુભવ કી જો ગહેરાઈ હૈ ઉસી દ્રષ્ટિકોણ સે કહેતે હૈ કે સ્વવિકલ્પ દશા મેં સે જ્ઞાની હૈ વો નિર્વિકલ્પ દશા મેં તો અંતર મેં કહાં સે કહાં ચલા ગયા, મેને બહોત દૂર ચલા ગયા. अलग देश में चला गया, आत्मा में डूब गया, स्वानुभूति में अंतर्लीन हो गया, जो दशा ऐसी एक आश्चर्यकारी दशा है कि जिसमें वो स्वरूप में लीन हो जाता है, आत्मा में डूब जाता है। और सविकल्प दशा जो कि आकुलता सहित है, उनमें अंतर है, उपयोग बार है, उसमें अंतर है। दोनों के बीच तुलना हो नहीं सकती, दोनों की बराबरी नहीं कर सकते। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि की भूमिका जघन्य है और दशा ऊंची हो गई है ऐसा भी नहीं है, तथापि उस आनंद मसूम समझे जी, ये आनंद अनुभव गोचर है, अकेला अनुभव गोचर है वो, तो कोई मुमुक्षु दशा में तो बिना अनुभव तो समझ में आता नहीं, और फिर वो चार और पांच गुण स्थान के बीच का आनंद का प्रश्न उठता है, तो उसमें तो कोई समझ में आने वाली बात है नहीं है। हाँ, असल भाषांतर नहीं आवे तो पची छेले लीटी गुजराती के चतुर्थ गुण चौथा गुण स्थान है बात क्या लिया है कि चौथा गुण स्थान निर्विकल्प और स्वविकल्प दोनों दशा होती है, चौथो गुण स्थान ही जघन्य भूमिका है, मोक्ष मार्ग के जघन्य शुरुआत की भूमिका है। तो निर्विकल्प दशा हो गई इसलिए कोई ऊंची दशा हो गई है ऐसी बात नहीं है। दशा तो स्वविकल्प में भी चौथा गुण स्थान है, निर्विकल्प में भी चौथा गुण स्थान है, फिर भी आनंद के वेदन में अंतर है चौथे गुण स्थान में, स्वविकल्प में और निर्विकल्प में, ऐसा कहने का अभिप्राय है। आनंद में फिर इसलिए कि वहां स्वविकल्प की आकुलता नहीं है निर्विकल्प दशा में, इसलिए आनंद के वेदन में तो बड़ा अंतर है, दोनों बात होती है। अकेली आकुलता होती है, उपयोग बाहर निकल गया ऐसा नहीं है, परिणति में शांति भी होती है, क्योंकि जो 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 उपयोग होता है उसकी परिणति बनती है, जो जो उपयोग होता है उसकी तीव्र रस जहाँ होता है उसकी परिणति बनती है। उपयोग बाहर जाता है उसमें आकुलता साथ ही रहती है, प्रशस्त या अप्रशस्त यानी शुभ और अशुभ जो भी भाव हो, परंतु उसके साथ आकुलता है, राग का विकल्प है दोनों में, शुभ में ही आकुलता है और शुभ में आकुलता नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे खाने में पीने में व्यवसाय वगैरह में दूसरे संसार के काम में आकुलता है और भगवान की भक्ति में आकुलता नहीं है ऐसा नहीं है, और आत्मा के चिंतन के विकल्प में आकुलता नहीं है ऐसा नहीं है। मैं परिपूर्ण शांत स्वरूप हूं, पर शांति अनंत अनंत शांति मैं हूं, अमृतमय शांति मैं हूं ऐसा विकल्प में भी अशांति है, शांति के विकल्प में भी अशांति है, ज्ञानी को भी और अज्ञानी में तो अकेली आकुलता है ही। उपयोग बाहर जाता है उसमें आकुलता साथ ही रहती है, और प्रशस्त और प्रशस्त दोनों में आकुलता है, राग का विकल्प है। अकेली निर्विकल्प विकल्प रहित निवृत्तिमय परिणति, अकेली निर्विकल्प विकल्प रहित निर्विकल्पमय परिणति, अकेली शांतिमय परिणति जहाँ अन्य कोई विकल्प नहीं उठता, अरे जहाँ सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक का विकल्प भी एकदम गौण है, मानो है या नहीं है, ऐसी जो दशा, उस दशा के साथ स्वविकल्पता की तुलना नहीं की जा सकती। मैंने निर्विकल्प दशा की महिमा की है, क्या है वहाँ तो अकेली निवृत्तिमय परिणति है, अकेली शांतिमय परिणति है, जहाँ कोई विकल्प उठा नहीं है। वो निर्विकल्प दशा के साथ स्वविकल्प दशा का मेल नहीं है, उसको तुलना नहीं करनी चाहिए, मिंडवनी नहीं करनी चाहिए। वर्तमान भूमिका भले चाहे जो हो, पछी पांचवा गुण स्थान नहीं हो कि चौथा गुण स्थान नहीं, एनो मेल करे मिंडवनी करी शकाय नहीं, एम कहूँ छू। ये रीते મહિમા કર્યો છે, મહિમા કર્યો છે નિર્વિકલ્પ દશાનો, મહિમા કર્યો છે છે કે નથી, જાણે જાણે છે કે નથી એટલે નથી એમ કે, એ રીતે મહિમા કરી છે નિર્વિકલ્પ દશાની, મહિમા કરે છે। કેમ કે નિર્વિકલ્પ દશાવા લોકો તો અબુદ્ધિપૂર્વક કા વિકલ્પ રાગ કી કોઈ પતા ચલતા નહીં હૈ, ઉનકા અપના જ્ઞાન સ્થૂલ હૈ, વો ઉનકો પકડ નહીં સકતા, કેવલી ગમ્ય હૈ વો, ઉનકો તો લગતા હૈ કે મેં તો એકદમ વિતરાગ 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 ભાવ મેં ડૂબ ગયા, વિતરાગ સ્વરૂપ મેં ડૂબ ગયા, उनको तो ऐसा ही लगता है जैसे राग मेरे में दशा में है, दशा में भी नहीं है, ऐसा उनको अनुभव होता है, लेकिन है तो सही, इसलिए वो स्वविकल्प दशा में बाहर आ जाता है। ये 308 प्रश्न समाप्त हुआ। प्रश्न 309, श्रद्धा का बल मंद क्यों हो जाता होगा? श्रद्धा का बल तीव्र होता है और कभी किसी को मंद हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रश्न उठाया, कारण पूछा है, श्रद्धा मंद होने का कारण पूछा है, यहाँ पर समाधान देते हैं। उस सब का कारण आप ही है, आप मैंने स्वयं ही है, कोई भी परिणाम है उसका कारण खुद ही है, कभी अपने परिणाम का कारण दूसरे को नहीं बनाना, एक गांठ लगाने जैसी बात है, गांठ मारने जैसी बात है, चाहे क्रोध हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, कुछ भी हो, अपने दोष का, अपने परिणाम का कारण कोई दूसरा है ही नहीं, चाहे पुरुषार्थ की मंदता हो, रुचि की मंदता हो, भावना की मंदता हो, अमुक प्रकार के प्रसंग हैं, उदय है, इसलिए हमारे परिणाम ऐसे होते हैं, वो बात बिल्कुल गलत है। खुद के परिणाम स्वयं के परिणाम स्वयं के कारण से ही होते हैं, ऐसा लेना। जैसे कोई अपने को अपमान करता है तो उसके सामने तो गुस्सा आए कि नहीं आए, और गुस्सा का कारण तो सामने वाला है कि नहीं है, नहीं। कोई भी परिस्थिति में अपने परिणाम का कारण अपन खुद ही है, ये लेना है, क्योंकि इसके परिणाम यहां तक पहुंचते नहीं, इसके अपमान के शब्द भी हमारे तक पहुंचते नहीं, हम हमको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो हमारे अज्ञान से और हमारी भूल से ये बात होती है, बस वो हमारी भूल है, इसलिए हमको द्वेष या गुस्सा क्रोध आता है। ऐसे श्रद्धा का बल मंद होता है उसमें कारण खुद ही है, अन्य कोई कारण नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य पत्र में नहीं आए, तारा दोष से तने बंधन छे, तेरे दोष से तू ही बंधन में कर्म के बंधन करते हो, ये ज्ञानी की पहली शिक्षा है। पहली शिक्षा में वो बात तो भूलने लायक है ही नहीं, हमको ऐसा हुआ इसका कारण वो है, वो बात है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक और बात कि आपके परिणाम बिगड़ने में हमारा कोई कारण नहीं है, इसलिए हम चाहे जैसी जैसा वर्तन करें, वो बात नहीं है, वो बात स्वच्छंद करने की बात नहीं है। सिद्धांत को सरलता से ग्रहण करना, ये वक्रता हो जाएगी। क्या ये वक्रता हो जाएगी? दूसरे के परिणाम बिगड़े, हो सके उतने वहां तक उसमें निमित्तत्व नहीं देना है, अपने को नहीं देना है, जो उनको मालूम है कि ऐसा करने से इसका परिणाम बिगड़ता है, तो हमें थोड़ा सरलता से चलना है कि इसके परिणाम नहीं बिगड़े, फिर भी सिद्धांत नहीं बदलता। जिसका भी परिणाम बिगड़ता है वो अपने कारण से बिगड़ता है, सामने वाले के कारण से नहीं बिगड़ता है। लेकिन बात जो है उसमें किस तरह लेने की है कि हमारे लिए वो लेने की है। जब जब हमारे परिणाम बिगड़े तब तब हमको ये लेना है कि हमारे कारण से बिगड़ता है, सामने वाले के कारण से नहीं है। और हमारे निमित्त से दूसरे का परिणाम बिगड़ता है तो हमें थोड़ा इसमें दरकार करना है कि किसी को दुख पहुंचे, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हो सके वहां तक, संभव है वहां तक। वो बात अपवाद है, उसमें वो बात की अपवाद है कि हम हमारा आत्मकल्याण के विषय में प्रवृत्ति करें और किसी के परिणाम बिगड़े, तो उसमें ऐसा नहीं है कि इसका परिणाम बिगड़ता है इसलिए हम वो प्रवृत्ति भी छोड़ दें, वहां वो बात नहीं लागू होती। इसलिए सिद्धांत सरलता से लेना है। सरलता मैंने क्या, आत्मकल्याण हुए वो मुख्य करके ही सभी बात को लेना है, वरना तो ये बात हो जाएगी कि चलो दूसरे के परिणाम बिगड़ते हैं, अपन को अपन स्वाध्याय करते हैं तो दूसरे के परिणाम बिगड़ते हैं, तो अपन को अपना स्वाध्याय छोड़ दें, अपन उधर स्वाध्याय करेंगे तो अपना दूसरे के परिणाम बिगड़ेंगे, लेकिन इसलिए हम छोड़ दें, वो बात उसमें नहीं आती। ऐसी बात पारमार्थिक बात तो हमेशा हमेशा मुख्य ही रहती है, उसको गौण करने का सवाल कहीं नहीं होता। यहां तो एक सामान्य बात है कि अपना परिणाम गिर गया श्रद्धा में, पुरुषार्थ में, रुचि में, भावना में, तो कोई संयोग प्रतिकूल हो गया कि किसी दूसरे के कारण से हुआ, फलाने फलाने का हमको संग हुआ इसलिए संग के कारण से हुआ, तो उसका क्या कारण है, वो बात नहीं है, संग हमने किया है, संग करने वाले तो हम ही थे, संग की रुचि करते हैं उनको संग किया ऐसा कहने में आता है। जैसे दो मित्र है, एक सद्गुणी है एक दुर्गुणी है, लेकिन दोनों की मित्रता पुरानी है। अब बात वो रही कि किसने किसका संग किया, गुणवान ने अवगुणी का संग किया या अवगुण जिसका था उसने गुणवान का संग किया, कैसे लेंगे इसका जजमेंट, कैसे लेंगे? संग तो दोनों को आपस में हुआ है, हम उसका जजमेंट कैसे निकाले? जजमेंट ऐसे निकालना चाहिए कि अगर सद्गुण वाला अवगुणी हो जाता है तो उसने कुसंग किया है, तो उसने कुसंग किया है। और दुर्गुण वाला का दोष निकल करके वो अच्छा हो जाता है तो उसने सत्संग किया है। इस तरह से उसका जजमेंट निकाला जाता है, जो हारता है उसी का दोष है और जो जीतता है वो बराबर उसकी ताकत है। दोनों में ताकत किसकी है कि जिसकी जो विजयी होता है उसकी ताकत है। तो इस तरह से जजमेंट निकाला जाता है। गुरु शिष्य में भी ऐसा ही होता है और सत्संग में भी ऐसा ही होता है। ज्ञानी एक होते हैं, बहुत से लोग उसके समागम में आते हैं तो क्योंकि ज्ञानी असत्संग करते हैं क्या, ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों? कि उनको रुचि नहीं है, लेकिन दूसरे लोग इनका सत्संग करने को आते हैं तो उसमें ज्ञानी का कोई अपराध नहीं है। नहीं, वो तो अपना अपना रस, आत्मरस और बढ़ाने के लिए सत्संग करते हैं, कराते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो दूसरे लोग जो आते हैं वो सत्संग में आते हैं ऐसा बोला जाता है, ज्ञानी असत्संग में जाते हैं ऐसा नहीं बोला जाता। ऐसी बात है। क्या कहते हैं कि सब में अपना ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अपनी ही भूल है, अन्य कोई कारण नहीं है। वो पंक्ति अपनी पूजा में आती है, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। लोहा गर्म होता है अग्नि से, तो लोहा को पीटते हैं तो साथ साथ अग्नि पर भी घनघात होता है, घन का मारना होता है। तो अग्नि ने लोहा की संगति की तो घनघात सहन करना पड़ा। ऐसे खुद कुसंग में जाता है तो खुद को नुकसान होता है। और कर्म विचारे कौन, उसमें वो है कि बहुभाग लोग ऐसे कहते हैं कि क्या करें, हमारा उदय ही ऐसा है इसलिए हमारा परिणाम बिगड़ता है। ऐसे कोई कर्म के उदय आ गए कि हमारे परिणाम बिगड़ गए कि नहीं, अलग बात है। तू इतना महान है और तू परमाणु पर दोष लगाता है कि उसने मुझे दोष कराया, तुमको शर्म आनी चाहिए। कर्म के उदय में कौन जुड़ गया, खुद ही। क्यों? कोई कर्म ने जबरन उसको खींचा है, ऐसी बात नहीं है। खुद ही अपने कारण से जुड़ा हुआ है। कर्म कुछ कर नहीं सकते, उदय आता है तो कोई कर्म कुछ कर सकते हैं सो बात है ही नहीं। खुद अपने कारण से उदय में जुड़ता है और राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर लेता है, उदय कुछ नहीं करता और कर भी नहीं सकता। बीज भूतकाल में तो पोतानू आवेलू है, वर्तमान में जोड़ाणो ये પોતાના કારણે જોડાણો કે ઉદય આવ્યો માટે જોડાણો, પોતાના કારણે ઉદયને જોડી દીધો છે, કર્મને કુછ કર દિયા ઇસકે પર પ્રભાવ ડાલ દિયા હૈ, ઉદય કા પ્રભાવ માં આ ગયા, એસી બાત નહીં। કર્મ કા ઉદય આયે ઓર જીવ કા ઉસકે સાથ જોડના નહીં જોડના વો જીવ કે લિયે સ્વતંત્ર હૈ। ક્યા હૈ? अगर वो जुड़ता है तो भी स्वतंत्र रूप से, नहीं जुड़ता है तो भी स्वतंत्र रूप से, ऐसी बात है। भगवान ने ऐसी स्वतंत्रता दिखाई है कि देख तू अपना परिणाम के लिए स्वतंत्र है, कर्म का उदय तुमको परतंत्र कर नहीं सकता। लेकिन संप्रदाय में एक उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता घर कर गई है कि जैसा जैसा कर्म का उदय आता है जीव को वैसा वैसा परिणाम करना पड़ता है, नहीं चाहता है तो भी। वो बात सरासर झूठ है। क्या है वो बात? सरासर झूठ है, ऐसा है ही नहीं। सिंह की ताकत के आगे मच्छरों की क्या ताकत है? सिंह एक सोया हुआ है और हजार मच्छर बैठ गए उस पर, तो सिंह को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबा सकता है क्या? नींद में भी वो करवट लगाने तो सब भगने लगेंगे, इतनी ताकत है। और सिंह को पता भी नहीं चलता है कि हजार मच्छर मेरे पे बैठे हैं, वो तो आराम से नींद लेता है, उतनी ताकत है। ऐसे अनंत कर्म भले ही आत्मा को बंधे हुए हैं भूतकाल की भूल से, लेकिन वर्तमान की ताकत ऐसी है कि वो उदय में आए और कुछ कर दें वो बात है ही नहीं। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात उसमें वो है, बहुत अच्छी बात है, सबसे तीव्र प्रकृति, बलवान प्रकृति बोली जाती है जिसका कारण रस यानी उदय में ताकत बहुत होती है, वो मिथ्यात्व की प्रकृति है। किसकी है? मिथ्यात्म के। उसका उदय हो तो सामने दर्शन में हो गई हो गए। अब क्या होता है कि जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको मिथ्यात्व की प्रकृति उपशम हो जाती है। सर्वप्रथम प्रथम सम्यक दर्शन के काल में उपशम सम्यक दर्शन ही होता है, तो मिथ्यात्व की प्रकृति का उपशम हो गया, वो दब गई, लेकिन नाश नहीं हुआ। उपशम हुआ मतलब क्या हुआ? क्षय नहीं हुआ। उसका उदय आ सकता है, अगर उदय आया तो मिथ्यात्व हो ही जाएगा जीव के परिणाम में, कर्म के कारण से नहीं, अपने पुरुषार्थहीनता के कारण से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव का सम्यक पुरुषार्थ बराबर चालू रहता है उसको मिथ्यात्व की प्रकृति का उदय आ ही नहीं सकता। क्या आ ही नहीं सकता? तो भले ही सत्ता में रहे उपशम के काल में, क्योंकि उपशम तो पूरा हो जाता है, फिर वो जी क्षोपशम संकेत में आता है। तो तीन और चार, सात प्रकृतियां हैं, तीन दर्शन मुह के और चार चार अनंत अनुबंध चारित्र के, उसमें कुछ का क्षय, कुछ का किसी का उपशम, किसी का क्षय हो जाता है, किसी का उपशम हो जाता है, उसको कहते हैं क्षय उपशम। वो क्षोपशम संकेत बहुत लंबे काल तक चालू रह सकता है, देवभव में जाता है तो सागरोपम का आयुष हो सकता है वहां, कितना सागरोपम का आयुष होता है, मनुष्य में तो उतना आयुष नहीं है, लेकिन यहाँ से आयुष पूरा करके ज्ञानी मुनि होते हैं वो चले जाते हैं देवलोक में और सागरोपम का आयुष भोगते हैं वहां, और क्षोपशम संकेत वहां रहता है, टिकता है। तो उनके जो दर्शन मुख के मिथ्यात्व की प्रकृति के परमाणु सत्ता में है, वो पुरुषार्थ चालू रहता है तो उदय में आ ही नहीं सकता, और पुरुषार्थ में च्युत हुआ तो उसका उदय हो जाएगा सीधा ही, और मिथ्यात्व में। सिद्धांत कुमार की दुर्ता है, इसको सूक्ष्म संपित चला गया और मिथ्यात्व में आ गया। तो ये दर्शन हो कि प्रकृति का उदय आया, तब तो ऐसा हुआ ना, तो उदय आया और यहाँ मिथ्यात्व हुआ, वो बात सच है, लेकिन उदय के कारण से नहीं, अपनी पुरुषार्थ हीनता के कारण से ये हुआ है, ये बात है, मूल में वो बात है। तो ये सिद्धांत ऐसे ही रहता है। नहीं, अनंतानुबंधि वो तो मिथ्यात हो गया तो अनंतानुबंधि चालू हो जाएगी, हाँ फिर सातो चालू होगी, मिथ्यात में आए तो सातो चालू होगी, सूक्ष्म में कुछ क्षय है, कोई उपशम है ऐसा है। ऊंचा तो नहीं, उदय आविद न सके, आविद न सके, दबाई दबायेलो ज रही, शोषण ज्यादा सुधी चालू है, क्षय थाय तेरे नो उदिया भावे क्षय थी जाए, क्षय संकित होने से तो उदय में आ नहीं सकता और क्षय हो जाता, उदय अभावी क्षय, उदया भावी क्षय कहते हैं उसको, उदय में आ ही नहीं सकता। और पुरुषार्थहीनता खुद की हुई, खुद के कारण से तो उदय में आ जाएगा, और भाव में भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधि चालू हो ही जाएगा। तो ये सिद्धांत तो बराबर रहा कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी, अपनी ही भूल है, अन्य कोई कारण नहीं है, यानी अन्य कोई कारण लेना नहीं है, गिनना नहीं है, निमित्त कारण हो नहीं हो हमको नहीं गिनना है, नहीं गिनना चाहिए, ये सरल विचारणा है सिद्धांत के, ये विचारणा सही है, ऐसा लेना है। कोई भी घटना हो, कोई भी प्रसंग हो, हमको उस प्रसंग में हमारे परिणाम कैसे रखना है, इस प्रसंग का जजमेंट हमें कैसे निकालना है, वो हमारे सही समझ पर आधारित है, ये हमारे सही ज्ञान पर आधारित है या हमारे विपरीत ज्ञान पर आधारित है। विपरीत ज्ञान से कोई भी प्रसंग को उल्टा ले लेंगे और अविपरीत ज्ञान से कोई भी प्रसंग को उल्टा ले लेंगे। सम्यक ज्ञान का वो स्वभाव है कि कोई भी प्रसंग वो उल्टा ही लेता है, सम्यक ही लेता है, उल्टा लेता ही नहीं। और जो मुमुक्षु है उसमें यथार्थता है समझ की, तो सभी प्रकरण सभी प्रसंग को सुलटा लेकर के ज्ञानी बनेगा, क्योंकि वो ज्ञानी की चाल से चलता है और अयथार्थ है तो वो कभी उल्टा चला जाएगा। मुमुक्षुता में दो बात बनती है, ज्ञान दशा में दो बात बनती नहीं है, ऐसी बात है। इसलिए अपन स्वाध्याय में तो लेते हैं, चलो कोई भी प्रसंग बना, हमको आत्मकल्याण में वो कैसे निमित्त होते हैं वही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसी दृष्टिकोण से हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए, ये हमारी पद्धति कार्य पद्धति होनी चाहिए मुमुक्षुता में भी, तब ज्ञान दशा आएगी, वरना ज्ञान दशा आएगी वो बात है। शास्त्र में बहुत सी बातें आती है, ये बात सिखाने के लिए आती है, पुराण जो है कथाएं हैं उसमें अनेक प्रकार की घटना का प्रसंगों का वर्णन आता है, तो ये बात समझाने के लिए है। कभी कभी ऐसी घटना होती है जिसके दो पहलू ऐसे होते हैं कि जजमेंट निकालना मुश्किल हो जाए, ऐसा भी होता है। जैसे हमारे यहाँ एक रक्षाबंधन का दिन आता है, श्रावण सुद पूर्णिमा होती है ना रक्षाबंधन, उसका इतिहास क्या है कि मुनिराज थे, नाम क्या है, विष्णु कुमार, विष्णु कुमार मुनिराज थे, भावलिंगी संत थे, 700 मुनि पर उपसर्ग आया और 700 भावलिंगी मुनियों को आग में जलाने की प्रसंग हो गया। ये मुनिराज कोई राजा था, वो उपसर्ग कर रहा था 700 मुनियों को, ये जला दो इसको। तो ये लब्धिधारी मुनि थे विष्णु कुमार जी, उन्होंने राजा को अपना प्रभाव दिखाया लब्धि का। राजा ने बोला कि आप कुछ भी हमारे से मांग सकते हो, क्योंकि तुम हमको, हम जहाँ रह सके इतने 3.5 हाथ मैंने हमारा देह है उतनी भूमि हमको दे, हम वहाँ रहेंगे। राजा ने बोला कि ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य है तो 3.5 हाथ भूमि उनको दे दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने हम वहाँ कर दिया तो ठीक है। उसने लब्धि से अपना शरीर इतना बड़ा बनाया कि 3.5 हाथ में वो 700 मुनि की जगह आ गई। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने हमको दे दी है वो जमीन, अब उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। राजा वचनबद्ध था तो 700 मुनि बच गए। ये घटना एक घटी है इतिहास में, पूर्व भूत काल में। तो उसका मूल्यांकन हमारे यहाँ दो तरह का होता है। अध्यात्म के प्रकरण में ऐसी बात आती है कि मुनि को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो राजा से मांगे, लब्धि का प्रयोग करे, ये मुनिराज की भूमिका के बाहर का बाहर की चीज है। तो विष्णु कुमार जी जो है वो मुनि दशा से च्युत हो गए, मुनिपना नहीं रहा। तो 700 मुनि बच गए लेकिन खुद को नुकसान हो गया। विष्णु कुमार जी को तो नुकसान हुआ है, हैं? वो तो बाद में, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, फिर से दीक्षा लिया, फिर से मुनि दशा आ गई, वो तो पुरुषार्थ से हुआ, भविष्य के पुरुषार्थ में बात जाती है। वर्तमान में क्या हुआ, अध्यात्म दृष्टि से देखो तो खुद को नुकसान हुआ है, क्योंकि मुनि दशा चली गई, अपना आनंद चला गया मुनि दशा का, समय एक तो से च्युत नहीं होते, तो संकेत की भूमिका में वो ऐसा कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न करेंगे कि क्या 700 मुनि को नहीं बचाना चाहिए क्या, अपन तो बाद में भी पुरुषार्थ करके मुनि दशा ग्रहण कर सकते थे। कि देखो, किसी को बचाने की कर्ता बुद्धि तो मिथ्यात्व ही है, चाहे एक जंतु हो, चींटी भी हो या कोई मुनि भी हो, कोई किसी को बचा सकते हैं वो वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं। ये तो विष्णु कुमार जी को विकल्प आया और यहाँ 700 मुनियों का आयु पूरा होने वाला था ही नहीं। अगर राजा जलाते भी तो भी एक भी नहीं मरने वाले थे, आग लगती नहीं या शांत हो जाती, कहीं मुनि लब्धिधारी होते हैं, ऊपर से पानी गिरेगा लब्धि से, तो कोई आग लगाएगा तो ऊपर से पानी गिरेगा। नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र में वो बात आई है, तो अपने बेवाई के मां जाते हैं, सब इनके विरुद्ध है, संत पुरुष वर्गानुसार है लेकिन सब इसके विरुद्ध, ऐसा ही कोई इसका उदय था, सब इसके विरुद्ध ही चले, इसके नात जात विवाह सब उसके विरुद्ध चले, घर में इसके परिवार वाले विरुद्ध नहीं चलते थे, बाकी सब इसके विरुद्ध ही चले। क्योंकि ठीक है, मेहता जी आए तो क्या है, स्नान तो कर लें फिर बाद में खाना खिलाएंगे, तो उतना गर्म पानी दिया, उतना गर्म पानी दिया, तो भी नहा ही नहीं सके, स्नान ही नहीं कर सके, धुआं निकलता था, पानी से कैसे नहीं स्नान किया जाता है, हम तो नहीं कर सकेंगे। तो इसमें क्या है, आपके तो कृष्ण भगवान है ही, आपके सब काम छोटे मोटे कर देते हैं, तो पानी को ठंडा कर देंगे, हम तो आपको ठंडा पानी देने वाले नहीं है। नाव ना हो तो नाव, नहीं ना ना हो तो मत नाव, ना ही बिना खाना हो तो खाओ, कुछ भी करो, पानी ये है हमारे यहाँ। तो सबको उनकी परीक्षा करनी थी, वैसे उनको बना नहीं बना दूसरी बात है। फिर वो मल्हार राग गाता है, क्या बरसो बरसो, हाँ बादल बरसो करके गाते हैं मल्हार राग में। तो वो बादल आ जाते हैं, बरसने लग जाते हैं, पानी ठंडा हो जाता है और मेहता स्नान कर लेते हैं। वहाँ तो भगवान का कर्तापना सिद्ध करते हैं, लेकिन ज्ञानी को मुनि को कर्ता बुद्धि होती अध्यात्म के दृष्टिकोण से तो ऐसा लिया जाता है। गुरुदेव ये बात लेते थे रक्षाबंधन के दिन में, बता व्याख्यान में लेते थे। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण है वात्सल्य का, कि 700 मुनि पर वात्सल्य का भाव आया है, तो वात्सल्य को मुख्य करके हम लोग एक दूसरे के रक्षा भी बांधते हैं कि आपके प्रति हमारा वात्सल्य है, आपकी रक्षा हो, आपका आयुष लंबा हो। आयुष कोई बदगट होता है क्या रक्षा बांधने से? ये धागा बांधने से कोई आयु कमी बेसी होता है क्या? ये तो संभव नहीं है, लेकिन एक वात्सल्य का भाव आता है। और परंपरा वहां से चली है विष्णु कुमार मुनि से, तो वात्सल्य को मुख्य करके दोष गिना नहीं जाता, वात्सल्य के राग को दोष नहीं गिना जाता। तो एक प्रसंग के दो पहलू हैं, क्या एक प्रसंग के दो पहलू हैं? करना धरना है ही नहीं। ये बात सुगनी जी ने ऐसे लिया है कि हमको तो प्रभावना का राग को भी रोग समझते हैं। हाँ, राग मात्र रोग है, हमको तो पूर्ण वितराग होना है, हमको प्रभावना का राग भी नहीं करना। फिर भी ज्ञानी को जो 8 अंग है संकित के सम्यक दर्शन के, उसमें प्रभावना अंग है और राग आए बिना रहता नहीं। तो वो प्रभावना का राग को रोग कहने वाले ने क्या क्या किया आखिर में क्या है? वो पिछले दिनों में कलकत्ता में फिर स्वाध्याय चालू किया, क्योंकि सोनगढ़ में अच्छे अच्छे लोग उनको सुनने लगे। तो कलकत्ता वालों को ये लगा कि अरे हम लोग तो उसकी दरकार करते नहीं, या उपेक्षा करके हम तो रहते हैं आपस में। क्या है कि कभी कोई प्रसंग वश मिलना जुलना तो मंदिर में हो ही जावे, कोई उत्सव के दिन हो, कोई बड़ा दिन हो, लेकिन उपेक्षा ही हुआ करते थे, कोई उनको सुनते नहीं थे। बाद में जब पता चला कि सोनगढ़ जाते हैं, बम्बई में लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, सोनगढ़ में सुनते हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट किया गया कि आपको स्वाध्याय कराना है। तो बहुत शुरू शुरू में तो वो कराते थे, फिर कोई चर्चा में विवाद हुआ तो उसने स्वाध्याय छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया। चलो हमको विवाद में झगड़े में टंटे में फंसना नहीं है, और कोई फंसेगा भी नहीं, तो वो तो हट जाते हैं, तो हट गए। फिर वो लेने को आए मंडल वाले, आपको स्वाध्याय कराना है, तो स्वाध्याय चालू किया। अब जो स्वाध्याय नहीं करते थे तो वो ध्यान में ज्यादा बैठते थे, ग्रंथ कम पढ़ते थे। जो स्वाध्याय कराना चालू किया तो ग्रंथ पढ़ना चालू किया, घर पे भी स्वाध्याय करने लगे। तो बात चली थी, उनके जो धर्म पत्नी थे उन्होंने एक दिन बोला कि ये तो सब अलमारी में पड़े हैं, उसमें धुली हो गई है, अब तो उसको छूते भी नहीं थे, तो उसमें धूल लग गई है, जम गई है, अभी ये ऐसा ऐसा धूल निकाल करके पढ़ने लग गए तो क्या बात है। तो फिर क्या करें, मंदिर जी में स्वाध्याय करते हैं तो कई शास्त्र में से पढ़ने प्रश्न आते हैं हमारे सामने कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसकी क्या अपेक्षा है, उधर ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसकी क्या अपेक्षा है, तो हमको समाधान देना पड़ता है। तो पढ़े बिना कहाँ से देंगे कि यहाँ वहाँ किस अपेक्षा से बात चली है, वहाँ किस अपेक्षा से चली है, वहाँ कौन सा प्रकरण चला है, वहाँ कौन सा प्रकरण चला है, तो पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ने लगे कैसे, तो ध्यान का काम कम हुआ और पढ़ने का काम चालू हो गया। तो ये दोनों परिणाम होते हैं, वो सहज होते हैं, दोनों परिणाम होते हैं वो सहज होते हैं। वात्सल्य की मुख्य क्या मुख्यता की जाती है तो अध्यात्म गौण होता है, अध्यात्म की मुख्य करते हैं तो राग की गौणता होती है, ऐसे होता है। सबको अपना लाभ की बात देखना है, क्या यानी अपने लाभ की बात देखेंगे और मोक्ष को अपना लाभ की बात देखना है, सीधी बात है। ऐसा नहीं है कि भले ही हमको कुछ आपका संग नहीं मिला, आप तो अपना काम करो, ऐसा मुमुक्षु तो नहीं कहेगा। मुमुक्षु ये कहेगा कि हमको भी थोड़ा समय निकाल करके अपनी साधना में से थोड़ा हमारे पर उपकार कर दीजिए। मुमुक्षु उपदेशक बनता है क्या कि नहीं नहीं आप तो अपनी साधना करो, आपको अपनी साधना में रहना चाहिए, आप मुनि हो जाओ, प्रसाद बढ़ा के आप मुनि हो जाओ, हमको उपदेश की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करेगा। सब अपने अपने बात करेगा और होने वाला होएगा, क्या होएगा, सब परिणाम अपने स्वकाल में आएगा। प्रभावना का राग आएगा तो अपने स्वकाल में, और साधना का पुरुषार्थ छूटेगा तो भी अपने कारण से अपने स्वकाल में। जिसको वात्सल्य का भाव नहीं हो उनको वात्सल्य उनको मुख्य करना चाहिए, नहीं वो नहीं देखना है। इसलिए तो ये व्यवहार चला है, रक्षाबंधन का व्यवहार क्यों चला समाज में कि वहाँ वो बात मुख्य नहीं की जाती है, वो तो गुरुदेव ने भीतर का जो पहलू है उनको दिखाया, लेकिन समाज में तो वही परंपरा चली, वात्सल्य की परंपरा चली है, कि वो तो सब समाज तो नीचे वाली थी, नीचे वाले को तो वही देखना है, का नुकसान हुआ वो समाज वाले को नहीं देखना है, ऐसे बात है। और गुरुदेव क्या बोलते थे, हमारी भूल हो गई इसलिए इधर आ गया, बखान हमारा आया, वैसे हमारी भूल हो गई इसलिए इधर आए हैं। मुमुक्षु ऐसे लगे साहब आपकी भूल हो गई ना इसलिए आप इधर आए, ऐसा बोलना चाहिए क्या मुमुक्षु? मुमुक्षु तो ऐसे बोलते थे कि ये बात हमको नहीं सुननी है, हमारे नसीब थे, हमारा परम सौभाग्य था आप इधर पधारे और हमको आपका लाभ मिला, प्रसंग तो जो है सो है, लेकिन देखने का एक ही प्रसंग को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और सबको अपने को आत्मकल्याण का लाभ होवे वही दृष्टिकोण से सभी प्रसंग को देखना है, इसी को कहते हैं सुनई सच्चा दृष्टिकोण, सुनई मैंने सच्चा दृष्टिकोण, और नुकसान हुए उसको कहते हैं कुने, वो गलत दृष्टिकोण है, ऐसी बात है। वो बात ऐसे बनी थी कि जब तत्व ज्ञान के क्षेत्र में विचारधारा चालू हुई तो खास तो वो शास्त्री जी को सुनने को जाते थे और विचार सागर ग्रंथ पढ़ा, उनमें से अंदर में खलबली बहुत मची और बहुत मंथन चलने लगा, बहुत थिंकिंग चलने लगा, चिंतन बढ़ गया, थिंकिंग बढ़ गया तत्व ज्ञान के विषय में। तो उसमें क्लैरिटी कोई आती नहीं थी और क्लैरिटी वहाँ है भी नहीं, तो अंदर में कोई क्लैरिटी आती नहीं थी, लेकिन एक भावना रहा करते थे कि हमारा थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रसंग को, कोई भी बात को सही जजमेंट हमारा निकले, ऐसा हमारे पास, हमारे ज्ञान में, हमारे विचारधारा में ऐसा इतना परिपक्वता, इतना कंट्रोल, उस प्रकार की हमारी स्थिति बननी चाहिए। सम्यक ज्ञान सब तो था ही नहीं उस वक्त तो हमारे पास, वो तो जैन शास्त्र भाषा का शब्द है, लेकिन अव्यक्त रूप से हम सम्यक ज्ञान को चाहते थे कि हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि सभी बात को, सभी प्रश्न को हम राइट जजमेंट निकाल सके, हमारा जजमेंट गलत कहीं नहीं हो गए। वो बात इस तरह से आती थी जिसको हम अभी कहते हैं कि सम्यक ज्ञान ऐसा होता है, और ज्ञानी का अभिप्राय इसलिए पूछा जाता है हर बात में कि आपका अभिप्राय क्या है। छोटे मोटे बात में गुरुदेव क्या कहते हैं संगढ़ में वो बात चलती थी कि कोई भी बात गुरुदेव के कान तक पहुंचती थी, अच्छा गुरुदेव ने फिर क्या कहा, फिर गुरुदेव क्या बोले, वही बात देखी जाती थी। इसका मतलब क्या कि इनके सम्यक ज्ञान में जो भी बात आती है वो सही, वो जजमेंट निकालते हैं वही सही ऐसे। क्या बात है कि किसी का अपने परिणाम में किसी का कारण नहीं, अपना ही कारण है, आप ही प्रमाद के कारण कहीं न कहीं रुक जाता है, श्रद्धा और पुरुषार्थ मंद होता है तो उसमें खुद ही अपने कारण से अपने प्रमाद, प्रमाद माने शिथिलता, शिथिलता कोई उदय आया इसलिए हो गई वो बात है ही नहीं, और ज्ञानी ऐसे लेते भी नहीं है। शिथिलता है वो अपने कारण से है, और कितना भी पुरुषार्थ तीव्र चले ज्ञानी को अपना पुरुषार्थ शिथिल ही लगता है। देखो ये सम्यक ज्ञान का दृष्टिकोण है। इस कृपालु देव है 10 साल की, 10.5 साल की ज्ञान दशा, साधक दशा में बहुत बहुत निर्जरा की है। एक जगह ऐसे लिखते हैं कि शायद हम निवृत्ति में होते तो उतनी निद्रा नहीं होती जितनी निद्रा हमने प्रवृत्ति काल में हमारी हुई है। फिर भी एक जगह ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा पुरुषार्थ शिथिल है, एक ही गुण स्थान में इतने काल तक हम क्यों रहते हैं, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हमारे जैसे अभिचारी भी बहुत कम लोग जानेंगे, बहुत कम लोग होंगे ऐसा मानेंगे। तो दोनों बात पुरुषार्थ उठाने के लिए है, दोनों बात है उनकी, वो पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। पुरुषार्थ की तीव्रता देखते हैं वो भी पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, अहम भाव करने के लिए नहीं, और पुरुषार्थ की शिथिलता देखते हैं तो भी पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, शिथिलता होने के लिए नहीं है। ज्ञानी हर बात में, शास्त्र में ये भी बात है, राग मेरा है ऐसा देखने में भी राग का अभाव करना है, और राग मेरा है ही नहीं ऐसा कहने में भी, ऐसा लेने में भी राग का अभाव ही करना है। बात परस्पर विरुद्ध कथन में दिखती है, परिणमन में अविरुद्ध है, परिणमन में अविरुद्ध है। ऐसे हर बात के दो पहलू होते हैं और दोनों को सम्यक रूप से लेने से कोई आपत्ति नहीं है। ये बात रही सम्यक ज्ञान की चाल की, सम्यक ज्ञान की चाल कैसे होती है। इसलिए अपनी भूल है, अपनी शिथिलता है, उसमें खुद ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अपना प्रमाद है इसलिए नहीं हो सकता, पुरुषार्थ नहीं चलता और इसी से कहीं न कहीं रुकना हो जाता है। तो अपना सत्संग का प्रसंग है, हम सत्संग में हमेशा नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं। तो नियमित रूप से सत्संग में आना तो चाहिए, सत्संग करना ही चाहिए, एक पहलू वो है। और आगे नहीं बढ़ते हैं तो कहते हैं कि सत्संग में रोज आते हैं तो क्या हो गया, कोई मतलब नहीं इसका, आप तो वहां के वहीं हैं और आपका रुकने का कारण भी सत्संग ही है। तो मैं तो सत्संग करता हूं, नहीं करता हूं ऐसी बात थोड़ी ना है, सत्संग तो मैंने चालू ही रखा है और बराबर सत्संग करता हूं। तो जो साधन है उस साधन से हम आगे नहीं बढ़ते तो वही रुकने का कारण है, और क्या है। त्याग विराग ने चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग विराग मा तो भूले निज भान। सभी जगह वही बात है, वो तो त्याग विराग का दृष्टांत लिया है, ऐसा सत्संग का ले लो कि अगर हम अटक गए, रुक गए, आगे नहीं बढ़े तो ये सत्संग में आया नहीं आया बात खत्म है, तो रुकने का कारण हो गया। क्यों? कि हमने ये ले लिया, हम तो सत्संग में रुक जाते हैं, करे भी क्या, इस भूमिका में तो सत्संग किया जाता है और हम करते भी है, बराबर करते हैं, बिल्कुल चुपते नहीं है, इसकी मुख्यता है, हमें हमेशा आते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमारे लिए रुकने का कारण हो गया कि नहीं हुआ, अहम रुके हैं। क्यों? क्यों जाने अनजाने में वही बात लेंगे हम, हम तो सत्संग करते हैं फिर क्या करें, इसे करें भी क्या, अगर आगे नहीं बढ़े तो हम करें क्या, सत्संग सत्संग से आगे बढ़ा जाता है और हम सत्संग करते हैं बराबर, कि बराबर करते हो तो आगे बढ़े बिना रहते हैं नहीं, इसलिए बराबर नहीं करते हो, रुकने का कारण बनाया है, रुकने का साधन बनाया है, ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे हर बात में सही दृष्टिकोण अंगीकार करना है, यही सही पद्धति है। अगर सही दृष्टिकोण अंगीकार नहीं करते तो गलत पद्धति में आ जाएंगे, चाहे कुछ भी साधन करें हम, यही बात हो जाएगी। और भी थोड़ा विस्तार है, कल के साध्य मिलेंगे।